हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं तारा अमन की बात समझ रही थी और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश कर रही थी कि अब अमन कितने सामान्य तरीके से बात कर रहा था। बीच बीच में ऐसा क्या हो रहा था कि अमन का व्यवहार इतना बदल रहा था। कहीं ना कहीं सारी बातों का सच जानने के लिए तारा को अब जल्दी ही रीत परी का इंतजार था, और लेकिन उससे पहले उसे उस फूल द्वारा पुष्टि करनी थी और उस फूल की पुष्टि के बाद ही उसे रीत परी को बुलाना था। इसलिए तारा किसी बहाने से अमन को वहां से भेजना चाहती थी। जब तारा को इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया कि अमन किसी भी कीमत पर एक पल के लिए भी उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, तब तारा ने जल्दी से अमन से कहा, अमन सर, आप मेरे लिए कौन से कपड़े लेकर आए हैं, आप मुझे वो बता दीजिए, मैं उन्हें ट्राई कर लेती हूँ। जैसे ही तारा ने कपड़ों की बात की, अमन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं तो कब से तुम्हें कपड़े ट्राई करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि आज कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखा रही हो। वेल, अब मेरा तुम्हें कपड़े पहनाने का कोई इरादा नहीं है। अब तुम एक काम करो, तुम खुद कपड़े पहनो, मुझे एक्चुअली जाना है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे पिताजी बुला रहे हैं। जैसे ही अमन ने अचानक ये कहा, तारा काफ़ी हैरान हो गई। वो तो खुद अमन को वहाँ से भेजना चाहती थी और कोई ना कोई बहाना सोच ही रही थी, फिर उसने हार कर कपड़े पहनने की बात कही थी, लेकिन अमन तो अब खुद ही वहां से जाने की बात कर रहा था। तारा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो कहीं ना कहीं अमन ने देख ली। वो कहने लगा, डोंट वरी, ज़्यादा मुस्कुराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द वापस लौट कर आ रहा हूँ और उसके बाद हो सकता है कि मेरा मूड भी बदल जाए। एक बार फिर अमन की बातें सुनकर तारा काफ़ी हैरान थी, क्योंकि अमन पर इस तरह की बातें बिल्कुल भी सूट नहीं करती थीं। अमन ये अमन था ही नहीं। हाँ, ये बात थी कि अमन तारा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन प्यार में ऐसी छोटी छोटी हरकतें, इस तरह की बात बात पर फ्लर्टी वाली बातें अमन कभी नहीं किया करता था। इसलिए तारा का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था कि ज़रूर अमन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब तारा को जल्द से जल्द पूरे घर के कोनों को उस सफ़ेद रंग के फूल से छूना था जिस फूल को दादा महाराज ने तारा को दिया था। रही बात मेहंदी के लिए तैयार होने की, तो उसके लिए तारा के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। चुटकी बजाते ही वो एक मिनट में तैयार हो जाया करती थी, तो अभी फ़िलहाल उसके लिए उस सफ़ेद फूल को घर के हरेक कोने से छूना ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए तारा ने जल्दी ही अपने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक छोटी सी तितली का रूप ले लिया था, क्योंकि वो इस तरह से सबकी नज़रों से बचते हुए हर एक कमरे के कोने को इस तरह से फूल से नहीं छू सकती थी, तो इसके लिए उसे अपना रूप बदलना ही था। इसलिए उसने तितली का रूप लेना ज़रूरी समझा था, क्योंकि तितली ही एक ऐसा कीड़ा था जो काफ़ी छोटी मात्रा में भी हो सकता था और तारा अपनी जादू के अनुसार अपना कद छोटा और बड़ा कर सकती थी। इतना ही नहीं, उसने उस फूल को भी बड़े ही छोटे आकार का कर लिया था और अपने मुंह पर लेकर जल्दी ही उसने पूरे अमन मेंशन में घूमना शुरू कर दिया था। तारा परी हर एक कमरे में आसानी से, कभी खिड़की के द्वारा या किसी का दरवाज़ा खुला हुआ था तो उसके द्वारा हर एक कमरे में जा रही थी और एक कमरे के कोने में से उस फूल को छू रही थी। धीरे धीरे करके, एक एक करके उसने सारे बंगले के कोनों को छू लिया था। केवल काली शक्तियों के मालिक अमित का कमरा बचा हुआ था। अब तारा को उस कमरे के कोनों को छूना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का पूरा यकीन था कि काली शक्तियों का मालिक अमित ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसलिए जल्दी से वो तितली का एक बहुत छोटा सा रूप बनाकर जल्दी ही उस कमरे में भी घुस चुकी थी। जैसे ही वो कमरे में गई, उसने अच्छी तरह से आसपास देखा। उस वक्त अमित तो उस कमरे में नहीं था, लेकिन तारा को उस कमरे में लाल रंग की एक छोटी सी बोतल में कुछ कैद दिखाई दिया था। वो क्या था, तारा नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उस वक्त वो एक तितली के रूप में थी और अगर वो वहाँ अपना असली रूप ले लेती है और इत्तेफाक से अमित वहाँ जाता है तो उसके लिए मुसीबत हो सकती थी, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो लाल रंग की बोतल उसकी आंखों में बस चुकी थी। जल्दी ही सारे कमरों के कोनों को अच्छी तरह से छू लेने के बाद तारा अपने कमरे में आ गई थी और अपने कमरे में आकर उसने जल्दी ही अपना रूप बदल लिया था और राहत की सांस ली थी। फिर जल्दी ही तारा ने उस छोटे से फूल को एक बार फिर उसके सामान्य आकार जितना कर दिया था और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे लगा फूल का रंग धीरे धीरे हरा होता जा रहा था। जैसे ही फूल का रंग हरा होने लगा, तारा ने समझा कि दादा महाराज तो ठीक कह रहे थे, वो शायद कुछ ज़्यादा ही इस बात के बारे में सोच रही है, इस घर में वाकई कोई काली शक्ति नहीं है। उसे बेकार में ही अंदेशा हो रहा था,
क्योंकि इस फूल का रंग तो हरा हो रहा है और हरे रंग का मतलब है कि घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई काला साया यहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए तारा ने जल्दी ही वो फूल बेड पर रख दिया था और फिर फटाफट से उसने चुटकी बजाकर मेहंदी के लिए तैयार होना शुरू कर दिया था। तैयार होने के बाद तारा की नज़र एक बार फिर फूल पर पड़ी, जो कि हरे रंग की बजाय अब एकदम गहरा लाल रंग का हो चुका था। जैसे ही तारा ने उस फूल को एक बार फिर रंग बदलते हुए देखा तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि इस फूल ने अपना रंग बदल लिया है, इसका मतलब जरूर यहाँ काला साया मौजूद है। तारा ने जल्दी ही अपने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस फूल के ऊपर फूंक दिया था और देखते देखते वो फूल वहां से गायब होकर सीधा दादा महाराज के पास पहुंच चुका था। जैसे ही दादा महाराज के पास वो फूल गया और उन्होंने उस फूल का बिल्कुल लाल रंग देखा तो वो समझ चुके थे कि तारा का जो अंदेशा था वो गलत नहीं था। जरूर इस काली शक्तियों के महागुरु ने इस बार कोई ना कोई बड़ा जाल बिछाया था। अब उन्हें वाकई अमन के पूरे परिवार की चिंता होने लगी थी, खासकर अमन की। अगर अमन अलग तरह की हरकतें कर रहा था तो इसका मतलब साफ था कि काली शक्तियों के महागुरु का निशाना इस बार कोई और नहीं बल्कि अमन ही था। अब दादा महाराज ने भी जल्दी अपने कड़े मंत्रों का उच्चारण करते हुए तारा से बात करने का फैसला कर लिया था और तारा को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि दादा महाराज उससे बातें करना चाहते हैं तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं और एक जगह बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करने लगी थी। दादा महाराज तारा से साफ साफ कह रहे थे, तुम्हारा शक जो था बिल्कुल ठीक निकला है बेटी, और अब हम तुम्हें एक रास्ता बताएंगे। काली शक्तियों से लड़ना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें सबसे पहले वो खास चीज पता करनी होगी कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो उस वक्त अमन को परेशान कर रही है, और उसे पता करने के लिए तुम्हें अमन के पास 24 घंटे रहना होगा। तब तारा मन में सोचने लगी थी, अमन तो खुद 24 घंटे मेरे आसपास ही रहना पसंद कर रहा है। तब तारा ने जल्दी से दादा महाराज से कहा, लेकिन दादा महाराज, अगर मैं ऐसी कोई चीज ढूंढ भी लेती हूँ तो फिर हम उसका निवारण कैसे करेंगे, क्योंकि अमन के ऊपर वो काला साया कब और किन परिस्थितियों में हावी हो रहा है और किस तरह से हो रहा है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है।
तभी दादा महाराज कुछ सोचते हुए कहने लगे थे, तारा बेटी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही हम इस चीज के निवारण हेतु एक कड़ा तप करेंगे और उसके बाद तुम्हें हम इसका उपाय जरूर बताएंगे। तब तक हम तुम्हें जो कह रहे हैं तुम सिर्फ और सिर्फ उतना करो, तुम 24 घंटे अमन पर नजर रखो और ये चेक करो कि कब अमन का बर्ताव बदलता है और ऐसा क्या होता है उसके साथ। जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा, तारा ने तुरंत उनकी बात मान ली थी। और तभी तारा ने दादा महाराज से कह दिया था कि वो 24 घंटे अमित पर निगरानी रखने के लिए भी अपनी एक जादुई परी बुला रही है, जो कि गायब होकर 24 घंटे काली शक्तियों के मालिक अमित पर नजर रखेगी, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद है ये जो भी हरकत कर रहा है ये काली शक्तियों का मालिक अमित ही कर रहा है। और जैसे ही दादा महाराज ने ये सुना, वो थोड़ा सा अब अमन और उसके परिवार को लेकर बेफिक्र सा हो गए थे कि तारा के रहते अमन पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने वाली थी, ये बात वो अच्छी तरह से समझ चुके थे। वो जल्दी ही तारा ने दादा महाराज से विदा ले ली थी, क्योंकि इस वक्त उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि पहले ही शाम के 6 बज चुके थे और पूरा फंक्शन शुरू हो चुका था। तारा ये सोचकर हैरान थी कि अभी तक अमन क्यों नहीं आया है। वहीं अमन इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि अपने पिता अमरेंद्र जी के पास बैठा हुआ था और वहां पर काली शक्तियों का मालिक अमित भी मौजूद था। कहीं न कहीं अमित को वहां देखकर अमन का दिल कड़वाहट से भर गया था, लेकिन वो अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान के साथ वहां बैठा हुआ था। वहीं अमरेंद्र जी ने अमन और अमित से कहना शुरू कर दिया था, बच्चे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम दोनों को ही मैंने बाप का प्यार नहीं दिया है, और कहीं ना कहीं तुम दोनों के मन में इस बात को लेकर उलझन भी होगी और शायद तुम इस बात के बारे में सोचते भी होंगे। लेकिन बेटा, मैं उस वक्त मजबूर था, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं अब तुम लोगों पर जी भरकर प्यार न्यौछावर करना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि अमित कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए ही यहाँ इस बंगले में रह सकता है, लेकिन इसी के मद्देनज़र मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं महीने में 2 दिन अमित के साथ भी रहा करूँगा। जैसे ही अमरेंद्र जी ने ये कहा, अमन के माथे पर बल पड़ गए थे। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित अंदर ही अंदर चिढ़कर रह गया था और मन में सोचने लगा था कि इस बूढ़े को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे अपने साथ रखना पसंद करूँगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं अंकल, आपके इस तरह से मुझ पर एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके बिना गुजारी है, तो मैं आगे भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ इस घर में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने बचपन के दोस्त अमन के लिए हूँ। जैसे ही काली शक्ति के मालिक अमित ने ये कहा, अचानक से अमन का दिल अब अमित के लिए पिघलने लगा था। वो सोचने लगा था कि वो तो उसे अभी भी अपना दोस्त समझता है, लेकिन क्यों उसके मन में फिर अमित को लेकर इस तरह से स्नेह भाव आ गया था। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहा था क्योंकि जल्द से जल्द वो अमन को इमोशनली कमजोर करना चाहता था। क्योंकि जिस वक्त अमन सबसे ज्यादा कमजोर होगा उस वक्त वो आसानी से अपने दानव को उसके जिस्म में प्रवेश करवा देगा। उसके बाद तो उसके प्लान सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता था। कहीं ना कहीं वो इसी चक्कर में था, इसलिए वो जितना हो सकता था अमन को तोड़ने की, उसके दिल पर वार करने की और उसे इस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि अमन काफी ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाए। जैसे ही अमित ने ये देखा कि अमन उसकी बातों से पिघलने सा लगा है तो उसने आगे कहना शुरू कर दिया था, देखिए अंकल, उसने जानबूझकर अमरेंद्र जी को अंकल कहा था ताकि वो अमन के और करीब आ सके। देखिए अंकल, मेरी नजरों में आप अभी भी सिर्फ और सिर्फ अमन के ही पापा हैं, आप मेरे पापा नहीं हैं। और वैसे भी मैं यहाँ आपके बुलावे पर नहीं बल्कि अपने दोस्त अमन के बुलावे पर आया हूँ। और रही बात मेरे साथ दो दिन रहने की, तो मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी अपनी जिंदगी अच्छे से काट रहा हूँ और मुझे आपके बिना रहने की आदत है। आपको बुरा लगे या भला लगे लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और नहीं, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, नहीं मैं आपकी कोई बात मानना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से जा चुका था। और काली शक्ति के मालिक अमित की बात सुनकर अमरेंद्र जी की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। क्या अमित अमन को कमजोर करके दानव का प्रवेश उसके जिस्म में करा पाएगा या वक्त रहते तारा उसे बचा लेगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।